मतलब प्रतिमा वाले एक जाति का घी ले सकते हैं क्या? अटपहरी घी का विधान है भैया, अब अटपहरी घी आप जैसे भी उपाय करके और करें। अब एक जाति और दो जाति ये तो मैं विशेष नहीं जानता भैया, किसी के मरने पर मालूम पड़ता है कि वो था और अभी तक जिंदा था, ये तो बहुत पुरानी कविता है मेरी, सन 82-83 के लगभग की है, ये आपकी पुस्तक पगडंडी में से ली है, इसका अर्थ बता दे। अच्छा, क्या होता है, एक कन्फ्यूशियस था, बहुत बड़ा दार्शनिक था, वो बड़ा मजाकिया किस्म का था, मजे मजे में वो और लोगों को दर्शन सिखा देता था। तो एक बार जो है एक व्यक्ति के पास गया रास्ते में और उसने देख लिया कि इनके दांत वांत तो है नहीं, तो कहता मुंह खोलो, तो मुंह खुलवा लिया उसका और देखा उसके भीतर, तो उसने कहा क्या देख रहे हो? बोले ये देख रहा हूं कि जो बाद में आए थे वो पहले कैसे चले गए और जो पहले से वे है वो बात तक क्यों बनी हुई है। आश्चर्य पड़ा वो कि ऐसी कौन सी चीज दिख गई इसको मेरे भीतर, तो उसने कहा कि तुम्हारे दांत बाद में आए थे लेकिन पहले चले गए और ये जीभ तो पहले से थी और अभी तक है, इसका राज क्या है? ऐसे वो हंसी हंसी में सिखाता था कि जो कठोर है उसको पहले जाना पड़ता है, जो मुलायम है वो बाद तक रहता है। उसी से ये रिलेटेड है। एक और वो घटना बताता है कि जब तक हमारे 32 दांत हैं, रोज रोज क्या हम हर एक दांत को देखते हैं कि टूट तो नहीं गया? छू करके देखते क्या 32ों के, गिन करके कि 32 है ये पूरे के नहीं? और जो अंदर एक आध टूट जाए तो जीभ दिन भरो तहीं तहीं जाती। इसका मतलब क्या है? जब तक था तब तक तो उसका कोई ख्याल नहीं और जब नहीं है तब बार बार ख्याल। अभाव में कीमत मालूम पड़ती है, सद्भाव में तो भूले रहते हैं हम। ये कहना चाह रहे हैं कि किसी के मरने के बाद मालूम पड़ता है कि अरे वो था और जिंदा था और मैं जिंदगी भर उससे मिला नहीं, आज मरने पर मातम पुरसी के लिए और कंधा देने के लिए जा रहा हूं, जीवन भर सहारा उसे कभी नहीं दिया। मरने पर हम पहुंच जाते हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए इतनी सी चार लाइनों का कुल इतना ही अर्थ था भैया, और कोई विशेष उसमें आप क्या लिखा आप ये नहीं समझ में आ रहा। कंफर्म करने के लिए कल मैंने आप कलकत्ता थे, अच्छा, कंफर्म करने के लिए मैंने पूछा था क्योंकि शिखर जी भी वंदना करके हम वापस आए कलकत्ता, हमको आचार्य श्री के दर्शन का लाभ वहाँ मिला, उस समय आपके दर्शन भी हमको हुए, पर अब पक्का हो गया। अच्छा, ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ वहाँ, तो मैं आचार्य श्री के साथी संग में वहाँ पर उस समय गए थे, आप वहाँ गए होंगे कलकत्ता, इसलिए जो है क्या होता है कि आचार्य श्री के संग में तो ना दर्शन करने कोई भी जाएगा तो सारा कंसंट्रेशन किस पे रहेगा? आचार्य श्री पर रहेगा। बाकी महाराज जी से थोड़ा बहुत किसी से परिचय होगा तो उनको देख लेंगे। हम देखते थे कुंडलपुर में कि आचार्य श्री के पास बैठे रहते थे तो कई लोग तो एकदम जो है वो अच्छा नहीं लगता था वहां पर उनकी दृष्टि, हम लोग बैठे हैं अब समता सागर प्रमाण सागर जी और हम सब आचार्य श्री कमरे में, तो हम लोगों की तरफ देख के एकदम अरे महाराज जी आप भी यहीं पर, और फिर आचार्य श्री के तो हम तो उनसे कहते हुए तुम पहले आचार्य श्री के नमस्तु तो करो फिर उसके बाद, तो परिचय होने पर तो ध्यान रहता है नहीं तो नहीं रह पाता ध्यान, इसलिए आपने कंफर्म किया, ठीक है। कल मैं सोच रहा था कि इन्होंने क्यों ऐसा पूछा, हमने कहा भी था कि क्यों पूछ रहे हैं, हम वहीं थे उस समय। आप पहले बता चुके हैं कि गृह प्रवेश करते समय भक्तांबर का पाठ करवाने के अलावा जाप के अलावा, ऐसा तो हमने नहीं कहा, हमने तो ये कहा कि भक्तांबर का पाठ तो गृह प्रवेश में होता ही नहीं है, ये किसने आपको सलाह दे दी और चल पड़ा ये दशक साल से बड़ी तेजी से बिल्कुल वायरस की तरह फैल गया वो एकदम, हाँ वायरस की तरह फैलता है, और बड़ा सस्ता काम है इसलिए, पर इसका बहुत अनुष्ठान होता है। जितनी चीजें घर में 10 प्रकार के वास्तु क्षेत्र सब मिट्टी भी लाके रखते हैं खेत की, और गाय भी बांधना पड़ेगी उसमें, और चावल और गेहूं और सब थोड़ी थोड़ी सब चीजें, फिर वास्तु विधान होता है तब जाके गृह प्रवेश होता, इसलिए तो किलकिल हो रही है आज घरों में, क्योंकि विधि विधान तो कुछ है ही नहीं, अतः पता ही नहीं है, बस अकेले उनने कहीं चुंगा लगवा लो और फलाने को बुला लो और चाय को इंतजाम कर लो, भी बांच दे हैं और अपना हो जाए काम, घर घुस गया अपन होगा प्रवेश, घर प्रवेश है इतने ही तो है ही, ज्यादा बहुत तो प्रसाद ही बांट दई थोड़ा बहुत चना चिरौंजी, नहीं भैया ऐसा नहीं है, वास्तु विधान होता 3-4 घंटे लगता उसमें, जाप करना पड़ता 11,000, 21,000, 31,000 कृपया बताइए वो कौन सा विधान है, किताब में लिखा हुआ है, आप उधर लाइब्रेरी में देख लें, या तो प्रतिष्ठा रत्नाकर या प्रतिष्ठा प्रदीप, दोनों में से कोई भी मिल जाएगी, नाथूलाल जी की है और एक पुष्प जी की है, उसमें लिखा हुआ है वास्तु विधान, यदि प्रतिष्ठाचारी का अभाव हो तो क्या पुस्तक के माध्यम से गृह प्रवेश की शुद्धि कर सकते, कर तो सकते हैं लेकिन पहले थोड़ी समझना पड़ेगी उसको, क्योंकि प्रतिष्ठाचारी वगैरह करवाते रहते तो उनको अनुभव रहता है, और अपन उसमें से कोई चीज भूल गए तो फिर गड़बड़ हो सकती है, तो आप पहले उसको पूरा समझ लें और फिर बाद में आप अपने मन से भी करें तो कोई हर्जा नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, पर मदद से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं तो यही चाहूंगा। क्यों अपन रिस्क लेते हैं, जब अपन को जीवन भर वहां रहना है तो उसकी शुद्धि करके ही रहो ना, मन प्रसन्न होकर के रहें, अपन धर्म ध्यान कर सकें घर में, है कि नहीं, इसलिए कह रहा हूं, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है कि आपको परेशान करने के लिए, नहीं, जो विधि होती है उससे करोगे आनंद रहेगा, आपको भी रहेगा, धर्म ध्यान में मन लगेगा। धीरे धीरे प्रश्न पढ़ें, उत्तर भी धीरे धीरे दें, धीरे धीरे मतलब वॉल्यूम कम करके या कि स्लोली, अब ये कौन बताएगा, मतलब एक एक धीमी गति के समाचार की तरह या कि वॉल्यूम कम करके, दोनों ही कम कर लेते हैं दोनों नहीं, नहीं तो उनका गड़बड़ हो जाएगा वॉल्यूम कम होने से। हे मुनि, आपसे पहले पूछा कि पहले कौन सा ग्रंथ पढ़ें, तो आपने कहा था कि रत्नकरंडक श्रावकाचार्य के साथ पद्म पुराण रखें कॉम्बिनेशन के लिए, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अध्याय 8 में कहा है कि पहले सम्यक्त होता है फिर व्रत होते हैं, वह सम्यक्त सपर के श्रद्धान होने पर होता है और वह श्रद्धान द्रव्यान योग का अभ्यास करने पर होता है, इसलिए प्रथम द्रव्यान योग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, पश्चात चरणान योग के अनुसार व्रतादिक धारण करके व्रति हो, इस प्रकार से मुख्य रूप से निचली दशा में द्रव्यान योग कार्यकारी है। कृपया मुनि श्री इस प्रश्न को धीरे धीरे पढ़कर उत्तर भी धीरे धीरे दें तथा उचित सलाह दें, क्या करें हम अज्ञानी हैं, जरा में ही भटक जाते हैं। आपने पहली बात कि 8वें अध्याय को पूरा बिना पढ़े और सिर्फ इतने से पोर्शन को यहां कोट किया है, उससे तो अर्थ यही निकल रहा है कि द्रव्यान योग पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन आप कृपा करके 8वें अध्याय का एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार अध्ययन करें और फिर उसके बाद निर्णय लेवें कि आपको क्या करना है। यह जो बात लिखी है वो किसके लिए लिखी है, वहां चारों अनियोगों की पद्धति की चर्चा करी गई है और फिर बाद में लिखा गया है कि जिस किसी भी अनियोग से प्रारंभ करने का आग्रह नहीं है, जैसा कि मुझे ध्यान है भैया, और जो अवित्पन्न है, जिनके अभी मार्ग में रुचि ही नहीं है, उनके लिए तो प्रथमानियोग का अभ्यास ही करना चाहिए ताकि मार्ग में रुचि हो, जिनके मार्ग में रुचि हो, करणानियोग के अभ्यासी होवें और सदाचरण का पालन करते हुए वे द्रव्यान योग का अभ्यास करें, ताकि जो है उनके लिए वस्तु स्वरूप ठीक ठीक स्पष्ट हो, स्वपर का भेद विज्ञान होवे, तब फिर उनका वह सदाचरण धीरे धीरे सम्यक आचरण रूप हो जावेगा। मैं तो सोचता हूं कि मैंने भी उस आठवें अध्याय को पढ़ा है, मेरी अपनी बुद्धि से तो मैंने यही उससे आशय निकाला है। अब आप चाहे जैसा आशय निकालना चाहें, हम लोग अवित्पन्न मति हैं। एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं, अवित्पन्न हैं, और दूसरी तरफ हम सीधे आत्मा के स्वरूप की चर्चा करना चाहते हैं, तो बताइएगा कि कैसे हम उसमें प्रवेश कर पाएंगे। अभी जो व्यक्ति पांच पापों से विमुख नहीं हुआ, कषायों की मंदता जिसके नहीं है, सच्चे देवगुरु शास्त्र के अर्थात वीतरागता के अलावा राग द्वेष इत्यादि का भी पोषण कर रहा है, उसके लिए हम कैसे कह दें कि वो द्रव्यान योग से शुरू करे। वैसे तो हमारा कभी कोई आग्रह नहीं है, और हमने जो कहा था कि प्रथमान योग और चरणान योग दोनों मिला करके शुरू करें, सो भैया वो भी हम अपना वापिस ले लेते हैं, हमें कोई आग्रह नहीं है। जहां से आपको जैसे अच्छे लगे, जिसमें कल्याण होवे, श्री गुरु तो सबका उपकार चाहे हैं, उसी में लिखा टोडरमल जी ने कि वे तो सबका उपकार चाहे हैं, सो जिस जीव से जैसा बने हैं वैसा उसे धर्म में लगावने का उपदेश देवे हैं, आग्रह कछु नाही। कोई जीव सर्व प्रकार के मांस का भक्षण करे है और मांस का त्यागी न हो सके है, तो बाखों कौए का मांस त्याग कराए के धर्म में लगावे हैं, सो छल करी कोई अन्न यह समझ करके कि मांसाहार का पोषण करे हैं, तो हम उसको क्या कहें। ऐसी बहुत सी चर्चा उस आठवें अध्याय में, पूरा कहो तो पांच के पढ़ के बता दूं और आपको उसका अर्थ कि जरा पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, हम किस भूमिका में हैं और हमें कहां से शुरू करना चाहिए। स्वपर का भेद विज्ञान करना ही हमारा मंतव्य है, लेकिन उस स्वपर भेद विज्ञान को कैसे क्रम क्रम से, हमने भी तो डेढ़ महीने आपके लिए क्रम क्रम से ही, और आज तो हमने कह दिया कि कुछ नहीं होने वाला इससे। कब कहा हमने, शुरू दही कह दे हो तो का हाथ में रह जाते, कच्चू हाथ में नहीं रह जाते, कम से कम हाथ में तो है कुछ, इसके बाद जो है हम विचार कर रहे हैं अब। तो इसलिए आवश्यक है कि पहले हम अपने परिणामों के बारे में जो करणान योग बताता उसको भी जान लें, अपने आचरण को सुधारने में वही आचरण को तो थोड़ा सुधार लेवे। भैया सप्त व्यसन करने वाले के हाथ में अध्यात्म शोभा नहीं देता, पांच पाप करने वाले के जीवन में अध्यात्म की झलक, राग द्वेष से रहित शुद्ध आत्मा की अनुभूति का एहसास क्या हो सकता है। इसीलिए शायद कुंद कुंद महाराज को लिखना पड़ा, तम एयत्त विहत्तम दाए हम अपनो परिणामो सबिवेन जदि दाएज प्रमाणम चुके जलम न घेतव्यम। मैं तुम्हें उस आत्मा के वैभव का दर्शन कराऊंगा जैसा मैंने अनुभव किया है, यदि मैं कहीं चूक जाऊं तो तुम छल ग्रहण मत कर लेना, अपनी भूमिका विचार कर लेना। मैं जिस भूमिका में बैठ करके आत्मा का अनुभव कर रहा हूं, उस भूमिका में पहुंचकर मेरी बात का वैसा अनुभव करके नक्की करना, नीचे की भूमिका में बैठकर मेरी उस ऊंची बात को नक्की करने की चेष्टा न करना, नहीं तो अपना कल्याण अपने हाथ से करोगे, मैं उसमें जिम्मेदार नहीं। अरे भैया सब कुछ स्पष्ट लिखा है, लेकिन उसको बार बार पढ़िए, मंथन करिएगा, चिंतन करिएगा। एक बार के स्वाध्याय से कोई निर्णय सहसा ले लेना ठीक नहीं है, पूर्वा पर विचार करके अन्य ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, सब आचार्य क्या कहते हैं, ऐसा मिलान करके क्या कहते हैं, आगम से नए से तर्क से सबसे सम्मत होने पर फिर अपने आत्मानुभूति से उससे तय करके निश्चित करना, ये चार बातें ध्यान में रखना। पहले आगम से प्रामाणिक कर लेना, फिर तर्क की कसौटी पे कस के देख लेना, फिर नए विभाग से जानना कि किस नए की अपेक्षा से वर्णन किया है, फिर कहते अपने स्वानुभूति प्रत्यक्ष, फिर अपने आत्मानुभव से उसको प्रत्यक्ष करके निश्चित करना सहसा कोई चीज और निर्णय नहीं कर लेना। भैया इतना ही इसके बारे में कहूंगा मैं, फिर जैसी आपकी मनसा मैं उसमें और क्या कहूं। जैन धर्मानुसार निर्माल्य द्रव्य को जैन लोग छूते और खाते नहीं हैं, उसे माली से कम मूल्य पर मांसाहारी लोग खरीद कर केसर से रंगे चावल, छुहारा, किसमिस आदि से पुलाव बनाते हैं, अतः कम द्रव्य से पूजन करने में क्या हानि है। और थोड़ी देर के बाद एक सेंटेंस और लिख देते, बिना द्रव्य के पूजन करने से क्या हानि है, इसमें क्या हर्ज है। भैया हम क्या कहें इसके बारे में। संसार में कितने प्रकार की चीजें हैं, कितने प्रकार के विचार हैं, आपका अपना विचार अपनी जगह ठीक है, मैं उसमें क्या कह सकता हूं विशेष, पर मेरे विचार से तो यह बात अपन को शोभा नहीं देती। क्यों? भगवान के सामने तो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और जितनी बनेगी अपनी हैसियत से द्रव्य समर्पित करेंगे। हम इस बात का विचार क्यों करें कि वो द्रव्य कहां जाएगी, हम तो चढ़ा चुके, उसका जो जैसा उपयोग करे सो करे, हम कहां तक उसका विचार करेंगे। अगर ऐसा विचार करना ही है तो चलो अपन विचार करते हैं, अपना पैसा अब हमें कभी भी बैंक में जमा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैंक में जमा किए हुए हमारे पैसे से पोल्ट्री फार्म खुलते हैं, फिश फार्मिंग होती है, उससे बहुत सारे और भी बहुत सारे काम होते हैं, अनर्गल काम होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें अब बैंक में भी नहीं रखना चाहिए पैसा। अब एक एक बात पर अगर अपन विचार करना शुरू करें तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप क्यों इसी बात को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और भी तो बहुत सारी बातें हैं, उनको रोक करके फिर इस चीज को रोकिएगा तो शोभा देती है, अन्यथा क्यों अपन लोग धर्म के अनुष्ठानों को ही पहले नंबर अपने विचारों का टारगेट बनाते हैं। हमको आश्चर्य होता है कि जब कभी कोई नया मंदिर बनता है तो प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, और नया 5-स्टार होटल बनता है तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। 2-2 करोड़ रुपए का वहां पर प्लान किया हमारे खजुराहो में 5-स्टार 3-स्टार होटल बनने का, उसका हम कभी विरोध नहीं करते कि हमारे शहर में 5-स्टार नहीं खुलेगा, हमारे शहर में अब मंदिर नहीं बनेगा, बन चुका हमारे यहां एक, अब कोई प्रतिमा जी नहीं आएंगी, रखी जा चुकी हैं कई प्रतिमाएं। ये हमको क्या हो गया, क्या इसको सिर्फ पंचम काल का दोष माने या कि हमारे अपने परिणामों की कमी माने, ऐसे विचार आते क्यों हैं। एक और किसी ने लिखा कि उस निर्माल्य को माली से लेकर के और बेच बाच करके उसके पैसे से और लोगों का उपकार करना चाहिए, गौशालाएं चलाना चाहिए। बताओ तो हम तो दे चुके अपनी वो द्रव्य, उसका अब हम कोई विचार नहीं करेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो हमारे लिए अब छूने योग्य नहीं है क्योंकि हमने उसको छोड़ दिया है। हम स्वयं उसे ग्रहण करें तो वह हमारे लिए अपवित्र है, दूसरे के लिए अपवित्र है, ऐसा नहीं लिखा। निर्माल्य सबसे शुद्ध द्रव्य है, लेकिन जिसने त्याग किया है उसके लिए बमन के बराबर अपवित्र है, ये ध्यान रखना। वो स्वयं ग्रहण करे तो नरक जाएगा और अंतराय कर्म का बंध करेगा, और दूसरा कोई ग्रहण करे तो करे, उसका चाहे जैसा उपयोग करे तो करे। हमारे अपने द्रव्य का, हमारे घर में शराब पीने वाला बेटा आसानी से उपयोग करता है, उस पर हम कभी विचार नहीं करते। हमारे घर के सदस्य जो है वो मांसाहार का इनडायरेक्ट पोषण करने वाली चीजें घर में लाते हमारे पैसे से, उसका हम कभी विचार नहीं करते। और मंदिर में जो निर्माल है उसका इतना विचार कर रहे हैं, क्या हो गया हमारी अपनी बुद्धि को पता नहीं। फिर भी आपका विचार, मैं फिर कहता हूं, आपकी दृष्टि से तो ठीक ही है, लेकिन मैंने भी आपको एक दृष्टि दी, मेरी ही दृष्टि ठीक है ऐसा मेरा कोई आग्रह नहीं है। आप अपनी दृष्टि को ठीक मानते हैं तो मानिएगा, मेरी दृष्टि को मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मुझे अधिकार है अपनी दृष्टि बताने का, जैसे आपको अपनी दृष्टि बताने का अधिकार है। आपका अपना सोच है, हमारा भी सोच है, आप हमारे सोच से सहमत नहीं होंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और आपके सोच से मैं सहमत तो नहीं हूं, इसलिए आपको भी कोई दुख नहीं होना चाहिए। क्या कह सकते हैं और? बहुत कठिन है। अरंत भैया वाली कहानी सुना दो। कैसे सुना दें? मन बनाएंगे फिर देखेंगे कभी होएगा तो। हाँ, इतना आसान नहीं है। आपसे पद्म पुराण के कृष्ण प्रश्न पूछे थे, आपने कहा कि प्रश्नोत्तरी में भरना है, ऐसा नहीं है। स्वाध्याय कर रहे हैं इसलिए पूछा था। स्वाध्याय करने वाला ग्रंथ लेकर के आएगा और उसमें पूछेगा दोपहर के टाइम में, अगर आप सचमुच स्वाध्याय कर रहे हैं। रोज जो है किसी ना किसी ग्रंथ में से, उनके जवाब उसी में लिखे हुए हैं, आप जो है ऐसा पूछ करके, और ठीक है, तुरंत के तुरंत आपने क्रॉस क्वेश्चन भी कर दिया, आपने क्लैरिफिकेशन तो दे दिया, अच्छा किया। उसको दोपहर में ले आओ और फिर अपन उस ग्रंथ में से बांच करके उसका अर्थ वहीं के वहीं हम बता देंगे आपको। हैं, चीनी के बर्तन में दोष है क्या? हाँ, चाइना क्ले जो है वो बूंद से बनती है। जो चाइना क्ले होती है वो ओरिजिनली जो है तो छुई, जैसे छुई हिल है ना जबलपुर में, वो भी पहले चाइना क्ले की तरह क्रॉकरी में यूज में आती थी, लेकिन अब वो उतनी फाइन नहीं है तो ये लोग बूंद का यूज करते हैं उसमें चाइकना क्ले बनाने में, इसलिए जो है इतनी स्मूथनेस रहती है और उसमें आवाज आती है, बिल्कुल एकदम क्रॉकरी खनखनाने की आवाज आती है। वो जो खनखनाहट है वो काहे की है? वो बहुत सॉलिड है, बहुत पतली हो जाती है, बहुत सॉलिड हो जाती है, वो वून का पाउडर है, इसलिए वो चाइना क्ले जो जितनी मैंने स्पेशल क्रॉकरी होगी उसमें उतना परसेंटेज उसका ज्यादा होगा। कॉलगेट करना चाहिए कि नहीं? कॉलगेट में कैल्शियम बाईफॉस्फेट होता है, कैल्शियम बाईफॉस्फेट हड्डी से बनता है। अगर बनते हुए देखना है तो जबलपुर से सैपुरा भिटौनी जाते समय 15 किलोमीटर पर एक सोबेलिस फैक्ट्री है, वहां जाकर के देख आइएगा, वहां पर बनता है कैल्शियम बाईफॉस्फेट, हड्डी से निकलता है और वो पाउडर के फॉर्म में और पैक होके जाता है टूथ पाउडर्स में, वही उपयोग में आता है, टूथपेस्ट में भी वही उपयोग में आता है। कुछ टूथपेस्ट हैं जिन्हें डिक्लेयर किया है कि वे उसका उपयोग नहीं करते हैं, बाकी तो सब में वही उपयोग होता है। कॉलगेट तो जितनी भी कोलाबोरेशन, फॉरेन कोलाबोरेशन की कंपनियां हैं जितनी भी, उन सब में वही चीज है। जो इंडियन स्वदेशी कंपनियां हैं उनमें फिर भी अभी गुंजाइश है, बाकी में तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, सप्त व्यसन के त्याग में दूसरे व्यक्ति से ब्लड नहीं लिया जा सकता क्या? मरण के समय इस सब का विचार नहीं किया जाता, ध्यान रखो, बाकी आप जाने। आपके कुछ दिन के सानिध्य में हमें कुछ अच्छे गुण आ गए हैं। अरे भैया थे पहले से ही, आ कहां से गए? कौन अपन ने कहूं से बुलवाया है? वे हते भूले थे अपन को याद आ गए कि अच्छा अपन इतने अच्छे भी हो सकते हैं, और कुछ नहीं किया हमने तो सिर्फ साबुन सोडा और पानी का इंतजाम करवाया, धोया हुआ तो आप ही ने है। और क्या, जब तप साबुन सोडा है और भावनाएं पानी है, जब तप और भावनाओं से जो है हम अपनी मलिनताओं को धो लेते हैं, वही अपन ने किया है, और कोई नया काम थोड़ी किया है, वो सारे गुण अपने अंदर थे। जैसे कि अच्छा है ये लिखा, जैसे कि हमको लौकी बिल्कुल पसंद नहीं थी, फिर हमने खाना शुरू कर दिया। आपके कुछ गुण तो हमने ग्रहण कर ही लिया, अब आप चौमासा करेंगे तो और भी कर लेंगे ग्रहण, ऐसी बात है। अच्छा ये हम लौकिक के लिए प्रसिद्ध हो गए, मतलब बदनाम हो गए क्या कहना चाहिए, हम अकेली एक ही सब्जी खाते हैं क्या करें। आज आपकी आहारचर्या के बाद जो प्रश्न का उत्तर दिया उसमें आपने कहा कि जो पुराना चौका है उस चौकी की ओर मेरे कदम नहीं उठे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जनरल स्टोर की दुकान है उसमें केक पेस्ट्री ब्रेड दीपावली के अवसर पर पटाखे कीटनाशक अगरबत्ती दवाइयां सब बिकती हैं, क्या पता। हमने ऐसा ज्यादा विचार नहीं किया ना हम इतना ज्यादा विचार करते हैं, बस ये है कि संयोग जिसका जब होता है उस संयोग का इंतजार आपको भी रहता है हमको भी रहता है कि जब जिसका संयोग होगा उसके यहाँ पर होंगे। हम आपसे इस बारे में और क्या विशेष कहें, कई बार हम आपसे इस बारे में आहार के बारे में चर्चा कर चुके हैं, आप तो थोड़ा सा निश्चिंत होकर के इन चीज़ों को करिएगा, और अगर इस बहाने कोई चीज़ आपके जीवन में अच्छी आ जाती है भैया तो उसको ग्रहण कर लीजिएगा। आहार तो एक निमित्त है अपने जीवन को सुधारने का, अगर कहीं कोई कमी है तो उसको दूर कर लीजिएगा, और क्या। हम चौके के बारे में भी हमने कहना बंद कर दिया, नहीं तो हम अक्सर जहाँ भी ज़्यादा दिन रहते हैं तो कहते हैं भैया चौके में ही चौका लगाओ, अब आप कहीं भी लगा लेते हैं कहीं भी बना के कहते हमने यहीं बनाया है तो हम आपकी बात मान के वहीं कर लेते हैं, पर हमको लगने लगता है कि हम तो कहीं भी कर लेंगे पर आपका चौका तो नहीं सुधरा ना हमारे आने से, हमारे जाने के बाद भी आपका चौका तो वैसे ही क्या वैसा अंधेरे में रहा छोटा सा रहा, और अगर इस बहाने आपने उसको सुधार लिया होता तो जीवन भर आप भी उसी में ठाट से बैठ करके और अपना, क्योंकि भोजन का तो बहुत असर पड़ता है शरीर के ऊपर, जैसे क्षेत्र में अपन बैठ के खाएंगे जैसा द्रव्य खाएंगे वो सबका असर पड़ता है, तो द्रव्य भी अच्छा हो, चौके लगाने के बहाने द्रव्य अच्छा हो जाता, शुद्ध द्रव्य लाते हैं और क्षेत्र भी पवित्र हो जाता है, इसलिए और हमारा कोई आग्रह नहीं है, फिर आपको जैसा भी। पर ज्यादा मीन मेष तो नहीं, उसमें लिखा है कि ना साधु को ज्यादा मीन मेष करना चाहिए ना श्रावक को, कहते हैं कि दो रोटी के लिए क्या ज्यादा चिकित्सा करना साधु की भी, और कहते दो रोटी के लिए श्रावक की भी क्या ज्यादा चिकित्सा करना, चिकित्सा करना मतलब ज्यादा कि अब ये किया कि नहीं किया वो किया कि नहीं किया इस तरह का, तो लिखा तो ऐसे ही है, पर फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि संयोग ऐसे जुड़ जाते हैं ज्यादा दिन हो जाते तो फिर बहुत सी बातें उठने लगती। हमने उनको खुद ही कहा था कि देखो आपके यहाँ पर जल्दी से हो गए होते तो आज ये कोई बातें ही नहीं उठती हैं, और थोड़े ज्यादा दिन हो गए तो लोग टोकना शुरू, अरे ये वजह से नहीं हो रही अरे ये वजह से नहीं हो रही, दुनिया भर की बातें हो जाती उसमें, तो आप बिल्कुल विकल्प मत करिएगा इन चीजों को लेकर के। पता नहीं क्या कौन सा कर्म हमने बांधा है, रहस्य कहते हैं अरे रज रहस्य विहीन, बाकी कर्म तो समझ में आते हैं लेकिन अंतराय कर्म को रहस्य कहाँ है, कब बालचंद जी आके खड़े हो जाएंगे कब चीटी रानी आके खड़ी हो जाएंगी कह नहीं सकते अपन, है कि नहीं, नहीं बाल आ गया अब किसने डाल दिया कि किसने डाल दिया जानबूझ करके डाल दिया नहीं, और पहुंचे पहुंचे और वहां से वापस पैर कदम मुड़ गए किसने क्या कह दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, अभी वो जो बांधा गया अंतराय कर्म है वो धीरे धीरे गल रहा है, गल जाने पर मार्ग प्रशस्त हो जाता है, जब तक बाधक कर्म उपस्थित है तब तक तो कोई कुछ भी करे कितने ही उपाय करे सफलता नहीं मिलती, इसलिए बिना किसी संक्लेश के और अपने को कर्मों को काटने का उपाय करते रहना चाहिए। आज जो है हमने सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं, हमारा मन था कि या तो महाराज जी एक भजन सुनाते और या फिर हमने विशाल भैया से कहा था, सो विशाल भैया कहने लगे कि महाराज जी से सुनेंगे, अब भैया आप लोग वाह क्यों विशाल भैया से सुन लें आप और कहो था ना उनसे जब तो भी आपकी मान जी, देखो भाई अब दो दो जनों की हो गई अब सुनाओ। हाँ तो एक भजन जो है फिर अपन मैत्री भाव करेंगे।
नहीं डाल दू
थोड़ा स्कूल चक्कर थोड़ा हाथ में
लेते
हैं वही कर दे यार
नहीं होता
तुम बैठ जाओ यहाँ से
नमस्ते महाराज
बोली वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की बोली गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की बोली मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की बोली मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज की बोली आचार्य संघ की तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया 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 क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा सत्य वचन क्यों छोड़ दिया क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तुम नाम जपन 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 क्यों छोड़ दिया झूठे जग में दिल ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया झूठे जग में दिल ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया कौड़ी को तू लाख संभाला कौड़ी को तू लाख संभाला लाल रतन क्यों छोड़ दिया लाल रतन क्यों छोड़ दिया तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया जिन सुमिरन में अति सुख पावे तिन सुमिरन क्यों छोड़ दिया जिन सुमिरन में अति सुख पावे तिन सुमिरन क्यों छोड़ दिया खालस एक भगवान भरोसे खालस एक भगवान भरोसे तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा सत्य वचन क्यों छोड़ दिया क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तुम नाम जपन 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 क्यों छोड़ दिया बोलिए गुरु और आचार्य विद्यासागर जी महाराज की बोलिए मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की बोलिए मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज की बोलिए आचार्य संघ की
सोने से पहले
जब मैं सोऊंगा उसके सोते समय में त्याग कर दूंगा कि अब मेरा सुबह तक के लिए त्याग, पानी का भी त्याग, बस इतना ही। इससे ज्यादा और विकल्प में मत पड़ो, नहीं तो ऐसी स्थिति बनेगी, आकुलता होगी और नियम भंग होने का मन बन जाएगा। मन से तो भंग हो ही गया, क्षतिम मनः शुद्धि विदेरति क्रमम, मन से तो नियम भंग हो ही गया, शरीर से बस थोड़ा और रह गया था कि पिया नहीं पानी या कि बढ़ाने का मन आ गया। इसलिए सावधानी रखिएगा। मैंने बहुत सारी बातें आपके इस प्रश्न के चलते कह दी, आप उनको बिल्कुल पॉजिटिव लीजिएगा। मैंने आपको सिर्फ एक समझाइश दी है, आप अपने नियम को 8 बजे भी कर लेंगे तब भी मुझे कोई, तब भी मैं आपको शाबाशी ही दूंगा, आप बिल्कुल इससे निश्चिंत रहिएगा। आप 7 बजे का नहीं निभा पाए जी, लेकिन आपने 4 दिन निभाया उस, वो बहुत बहुत बड़ा काम। अब आप 8 बजे के बाद नहीं पिएंगे, वो जो 8 बजे के बाद नहीं पिएंगे आप, उसके लिए मेरा समर्थन, वो जो आप 8 बजे तक पिएंगे उसके लिए मेरा कोई समर्थन नहीं, लेकिन 8 के बाद तो नहीं पिएंगे ना आप, बस। तो उसमें मैं आपके साथ हूं, त्याग में आपके साथ हूं, ग्रहण में, ग्रहण में आपकी जिम्मेदारी। देखिए बहुत स्पष्ट सी चीज, 12 बजे की रात नहीं के बाद, 12 बजे तक मैं महाराज पानी पीने का नियम लेता हूं, मैं 12 बजे रात तक पानी पीने का नियम नहीं दूंगा, 12 बजे के बाद नहीं पीऊंगा ये नियम दे सकता हूं। हाँ, तो इस तरह करिएगा उसको। आप मतलब मेरे से ये पूछ रहे हैं कि 8 बजे तक पी लूं, मैं ये कह रहा हूं कि 8 बजे के बाद नहीं पीऊंगा ये ले लो आप बस। आलू प्याज लहसुन पत्ता गोभी इनका त्याग करते हैं, कर दो भैया जल्दी से। 10 साल का कोई बेटा है, मैं एक धार्मिक युवा हूं और रोज मंदिर जाता हूं, लेकिन मुझे देव दर्शन की सही प्रक्रिया नहीं मालूम, देव दर्शन की प्रक्रिया विस्तार समझा दीजिएगा, विस्तार से। लंबा प्रश्न है, आज तो नहीं कर पाऊंगा इसको। ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दोनों महाराज साहब को नमोस्तु, ये प्रश्न को मैं टाल रहा था पर फिर भी मेरे हाथ में फिर आ जाता है वो, अब फिर इसको नीचे कर देता हूं। हाँ, जो भी कर रहा हूं आपके सामने ही कर रहा हूं। आज तो प्रश्न बहुत कम है, ये भी एक प्रश्न है, समय बचेगा। महाराज जी एक आध्यात्मिक भजन जरूर सुना दीजिएगा, आपको आपका भजन रिकॉर्ड करना है, क्योंकि सिर्फ एक दिन आपके ने भजन सुनाया था, मैं बाहर गया था उस समय भी भजन में नहीं सुन पाया, टेप भी नहीं कर पाया, अपेक्षा रख रहा हूं। वैसे अपेक्षा से गुस्सा आ सकता है, फिर भी फिर भी अपेक्षा रख रहा हूं, अपेक्षा रखिएगा, मैं पूरी कर पाऊंगा जब तो कर दूंगा। आज तो अभी भजन सुनाने का मन भी नहीं है, और मेरे को तो एक ही भजन वो याद है और वो मैं सुना चुका हूँ, अनंत नाम वाली कविता होगा तो सुना देऊंगा। आज हम सोच रहे थे कि महाराज से सुनते एकाध भजन क्या महाराज जी, हाँ जिन 7 तो बज गए, 10 मिनट हो गए, 7 बजे के 10 मिनट हो गए, जब पूछिए आपने क्या है, 5 मिनट तो लगेंगे जब तक उजियारो रहे, जब तक को है नहीं है, ऐसा तो है नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन, जो ये सब हो गए, ये दो क्वेश्चन, ये शास्त्र की जो दर्शन की विधि है मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, डिटेल में बताऊंगा, 10-15 मिनट अच्छे से अपन उस पर विचार कर लेंगे। और एक पुस्तक भी है, उसमें से आर्टिकल भी मेरे से ले लीजिएगा, वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ईर्ष्या के बारे में प्रश्न है, ये प्रश्न सुनाने का लोभ भी है और फिर लग रहा है कि काय को अब मन खराब हो जाएगा, सबका खराब हो सकता है, रहन दो अब, हमारा तो जैसा है सो ठीक, और लोगों का भी खराब हो सकता है। ये आलू प्याज लहसुन मूली फूल गोभी 1 वर्ष का त्याग, कौन सी बिटिया है ये, नीचे नाम लिखा है उसका, नाम मैं लेता नहीं बिटिया लोग का, कौन है तुम्हारा है, अरे तो तुमने अपना नाम गलती लिख दिया क्या, ठीक ना, तुम्हारा नहीं होगा, तुम तो वैसे ही, तुम तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो बैठ के, वो अलग होगा। ये किसका है किसी का,
यद्यपि भान पूरब से पश्चिम उदय होए तो हो जावे, परंतु जो कुछ लिखा भाग में कहो वो क्यों टलने पावे। यद्यपि भान पूरब से पश्चिम उदय होए तो हो जावे, परंतु जो कुछ लिखा भाग में कहो वो क्यों टलने पावे। रामचंद्र हुए बाल प्रतापी कर्मयोग बन बन भटके सीता सती वियोग शोक में विपन माही चिर काल फिरे। शुभ कर मन का हुआ योग जब शुभ कर मन का हुआ योग जब पवन पौत्र सुग्रीव मिले हो निशंक जब चढ़े लंक रणभूमि भयंकर शब्द करे विधि विचित्र है देख दसानन हरिबल से सुत पकड़ाए यद्यपि भान पूरब से पश्चिम उदय हो ये तो हो जाए परंतु जो कुछ लिखा भाग में कहो वो क्यों टलने पाए। नारायण श्री कृष्ण बलिष्ठ नारायण श्री कृष्ण बलिष्ठ तीन खंड जिनके तर में जरासंधु से जोधा मारे कंस पछाड़े पल भरो में धात खंड से जाए द्रौपति अपना निज बुज बल करने ये जी अपना निज बुज बल करने कहाँ गया वह प्रबल पराक्रम जब आग लगी द्वार का पुर में विस्मय है ये जी जरद कुंवर को बाण प्राण ये जी बिन शाये यद्यपि भान पूरब से पश्चिम उदय हो ये तो हो जाए परंतु जो कुछ लिखा भाग में कहो वो क्यों टलने पाए। पांचों पांडवा प्रबल बरी जिन दुर्योधन से भट मारे टुंडी देवी माँ प्रचंड तहा सिंध नीर से तेरे आए तो ही दाके बचे नहीं बे मुनि विपन विपन होने दुख पाए यद्यपि भान पूरब से पश्चिम उदय हो ये तो हो जाए परंतु जो कुछ लिखा भाग में कहो वो क्यों टलने पाए।